राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 मई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जैसे वृक्ष है हवा चलती वैसे ही है, वर्षा बरसे तो वैसे ही है, घाम तो वैसे ही है, पृथ्वी है तो वैसे ही है, पहाड़ है तो वैसे ही है, वर्षा ऊपर हो तो वैसे ही है, घाम तप तो वैसे ही है, खूब ठंडक आए तो वैसे ही है, खूब जोर से हवा चलते वैसे ही। ऐसे मनुष्य को रहना चाहिए, ये भगवान शिक्षा देते हैं। ये जो परिवर्तनशील संसार है ये शिक्षा देते हैं भाई, अपने आप परिवर्तनशील रहो। इसमें ये बदलता है, कोई एक रूप रहेगा नहीं। वर्षा कोई हर समय नहीं होती, वायु कोई हर समय नहीं चलता, तपत कोई हर समय नहीं रहती, ठंडी भी हर समय नहीं रहती, ये बदलता है। पर जो पृथ्वी है, पहाड़ है, वृक्ष है, ये ऐसे ऐसे रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य को अनुकूलता प्रतिकूलता मन चाही बेचाही होती रहे, अपने वैसे ही रहेंगे। तो कैसी बढ़िया बात है। सम दुख है सुख है स्वस्थ है समदोष्ट आत्मता तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्कृति मान अपमान तुल्यो विचारी पक्षी हो सर्वारंभ परीक्षा भी गुणाती कैसो। गीता का सिद्धांत बताएगा समत्वम योग उचित है। समता का नाम योग है, सम रहना, सिद्धि सिद्धि हो समो भूत्वा समत्वम योग उचित है। संसार में परिवर्तन तो होता ही रहेगा, कभी अनुकूल का प्रतिकूल का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये संसार का स्वरूप है। तो इसमें रह करके भगवद गीता के अनुसार भगवान की मर्जी के अनुसार अपने विपरीत विपरीत धैर्य माधा व्यधे क्षमा सदस्य बात पटुता युधि क्रम सदस्य महात्मा। महात्माओं का ये प्रकृति सिद्धवाद है, स्वभाव में विपरी धैर्य विपत्ति आदि धीरे तथा विपता में रहे, विपत्ति धैर्य मधाभ्युदये क्षमा अभ्युदयु सहनशीलता छलपे में और से रहे सब। समझ के बाद पटुता यदि विक्रम सभा में बड़ा सुंदर बोले और युद्ध में पराक्रमी हो, यश में अभिरुचि व्यसनंग सुतो शास्त्र में लगा रही है व्यसन हो सुनो सब तो दूर कर मेरे व्यसन रखो व्यसन दो पास एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास। सब तो दूर व्यसन है उन व्यसनों का त्याग और दो व्यसन रखो व्यसन रूप से रहा न जाए विष्णु से सो बात रहो न ज्यादा रह दिया तो भगवान के भजन करने का एक व्यसन हो और एक विद्या के स्पर्शन पाठन में एक व्यसन हो। इज्जत पड़ता रहेगा तो ठीक है। तो प्रकृति शुद्ध मैदान भी महात्मा नाम श्रेष्ठ पुरुषों की ये प्रकृति होती है, स्वभाव सिद्ध है, इसमें उनको कोई करना नहीं पड़ता, स्वतः सिद्ध ऐसे मौज में रहे। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर है। मनुष्य शरीर में ये बात समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है, कही जा सकती है, सही जा सकती है, और शरीरों में ये समझने की वो बुद्धि नहीं है। देवता शरीरों में भोग बुद्धि वहां एवं भोग सामग्री ज्यादा है देवलोक में, परंतु सिद्धि असिद्धि में समझ नहीं है। मनुष्य लोग में ये सिद्धि प्राप्त करनी है, कैसे भी हर हालत में अपने मत में बजाए, सब मेरे पैदा हुए, सब में मैं समान हूँ, समूह में सर्वभूते हैं, जो देश व्यवस्था प्रिय, कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रेमी का विषय नहीं है, इनमें भी समसम व्यवहार करते हैं। भक्त अभक्त हृदय अनुसारी, भक्तों का अभक्तों का हृदय, उनके अनुसार भगवान बर्ताव करते हैं। भगवान के मन में कोई राग है न द्वेष है, हर्ष है न शोक है, अच्छा है न मंदा। तो भगवान के भक्त भी ऐसे होते तब तो जीवन मुक्तों के लक्षण भी ऐसे ही बताए, इनमें समता आती, समता क्षमता से समता आ जाती है, मस्त रहते। अब भी भगवान को याद करते रहे हर हालत में, तब तेन कंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवादृतम विपाकम हृदवागौर्भर नमस्ते जीवे दयो मुक्ति परेश दाय भाक। दसम स्कंध के पूर्वार्ध के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। उद्भव में लिखा है कि आपके भक्त कैसे होते हैं, प्रत्यनुकंपाम सुसमीक्ष माना, आपकी अनुकंपा की तरफ देखते, कृपा की तरफ देखते हैं। जो विधान होता है भगवान की कृपा पूर्ण होता है। हर शोक राग द्वेष करना ये तो गलती है, समझ बेसमझी की बात, भगवान के विधान में हाँ हाँ मिला दी, इसके मैं उसकी शरणागति है। तो भगवान का जो विधान होता है वो मंगलमय होता है, सबके लिए मंगलमय होता है, सबके लिए बड़ी शांति देने वाला, आनंद देने वाला होता है। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माना, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी अनुकंपाओं को ठीक तरह से देखते हुए और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, ये जो अपने किए हुए कर्मों का फल है अच्छा और मंदा, वे सब नष्ट होने के लिए आते हैं। अच्छा है वो अनुकूल रूप से आता है, मंद कर्म है वो प्रतिकूल रूप से आते हैं नष्ट होने के लिए। अनुकूल तो प्रतिकूल सुख और दुख ये नष्ट होने के लिए आते हैं, खत्म होने के लिए। तो ऐसे भुंजान ये बात अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए हृदभाग बबुल हृदय से वाणी से और मन से नमस्कार करता रहे भगवान को, ऐसे जीता है वो मुक्ति पद का भागी होता है। यहाँ हलचल में जो अपने सुख और दुख भोगते हैं उसमें अपने विचार नहीं, अपने भगवान की तरफ देखें, भगवान करते हैं वो मंगल ही मंगल करते हैं, आनंद ही आनंद करते हैं, सुख ही सुख करते हैं, दुख का काम ही नहीं है। वास्ते मस्ती से ले भगवान के और भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, पद गावे, भगवान की लीला का गान करे, उसे मस्त आनंद है। कुछ लीला पद गा दे भाई, भगवान की लीला के पद सुनो, पद सुनाओ, पद सुनो, लीला के पद सुनाओ और डर जाओ। और जो टाट पड़ा है ना, तो गीली जमीन में टाट बिछा करके डर जाओ, मिला जाओ।
सत्यवान की जो है, तो जब धर्मराज जी आए तो उन्होंने कहा कि भैया जो तुम मांगो, तो वो मांगने के लिए वो दे कहकर ठीक है, ये दे दो, ये दे दो। फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ा कि महाराज आप जैसे महापुरुष मिल गए, फिर इतना इतने से क्या हो। फिर है जो को पीछा नहीं, आखिर में वो चले गए। तो हमारे भी है वो जो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इतना ऐसा दिखता नहीं है।
हम क्या करें, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। वो जो द्वादश है कितने हैं वास्तव में धर्म को जानने वाले, उनमें बैठे
हमारे को सुनाई नहीं, सुनाई कौन देव है।
मानो धर्म के तत्व को जानने वाले जो पुरुष है उनमें से धर्मराज थे, तो वे सर्वसमर्थ थे। तो सर्वसमर्थ सब कुछ दे सकते हैं। और महाराज विशेष बात तो ये होती है कि सावित्री का जो व्रत है बड़ा विचित्र है। राजा अश्वपति थे, क्या नाम उनका, राजा। तो पुत्री हमारी बहुत सुंदर है, विशेष है, तो उसके लिए वो खोज गया तो कोई वर मिला नहीं। अरे बल्कि मेरी प्यारी पुत्री है तो अच्छा वर मिले इनके अनुरूप, उसको मेरी कन्या दूं, ऐसा विचार था। बहुत स्नेह वो था बेटी पर, ज्यादा स्नेह प्रेम था, अधिक स्नेह। तो उनको तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया कि बेटा तुम जाओ तीर्थ यात्रा, साथ बहुत फौज पलटन राजा जी सब साथ में, साथ बहुत फौज पलटन राजा जी सब साथ में, सखियां दूजी बहुत विशेष साथ में, तीर्थ यात्रा में जाओ और तुम फिर कर आओ ठीक तरह से, तुम जिसको पसंद कर लोगी उसका ब्याह मैं कर दूंगा। मेरी दृष्टि में तो कोई ऐसा योग्य वर मिला नहीं, और तुम जिसको स्वीकार कर लोगी फिर मेरे कोई विचार नहीं है। स्नेह बहुत था बेटी पर, प्यार था। तो तीर्थ में गई तो तीर्थ में फिरते फिरते सत्यवान को देखा, तो सत्यवान को देखते ही उसका मन हुआ कि बस इसको भरना है। मैं तो सत्यवान को भरने का विचार कर लिया। असलों का अब चलो अपने घर पर चलो, उनका नाम पता दिया, सब देख लिया। घर पर आए आए तो अपनी माँ से कह दिया कि मैंने ये वर देखा है, मैंने तो उसको अपना वर मान लिया। ऐसी बात हुई राजा के सामने, सब के सामने बाहर आई। उस समय नारद जी आ गए। नारद जी महाराज से पूछा कि महाराज हमारी पुत्री ने जो भर स्वीकार किया है वो कैसा है। बाल जी कहते कैसा क्या है, दुनिया में एक ही है, ऐसा विलक्षण है, इतने उसमें गुण है, बड़े धर्मात्मा है, माँ बाप का बड़ा भक्त है, सत्य प्रतिज्ञ है और स्थूल भी है, जितने गुण मनुष्य में होने चाहिए उन सबके सब गुण है, परंतु एक बात की कमी है कि महाराज वो कमी क्या है कि क्या बता। आज से 12 महीनों के बाद जो आज का दिन आएगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। गुण क्या काम आए, जो मृत्यु हो जाए तो गुण क्या काम आए। तो कहा बेटी, नाथ जी ने कहा है कि ये बात झूठी तो होगी नहीं, तो वो तो मर जाएगी। तो सावित्री बोली, ये तीन चीजें एक बार होती है, भाई भाई का बंटवारा होता है, बाप बेटा का बंटवारा होता है, वो एक बार ही होता है, और लेने में कोई कहता कि मैं तुम्हारे को देऊंगा तो एक बार ही होता है, ऐसे कन्या का विचार एक बार ही होता है, जिसको बस स्वीकार कर दिया। इंद्रिय कामी सकल सकल एक बार ही होते, तो मैंने उनको स्वीकार कर लिया, अब दूसरा कैसे होगा। तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं तो उसको ही भरूंगी। फिर वो राजा में अपने कन्या को से पहुंचे, उधर क्या हुई, वो राजा थे पिताजी उनके, उनके मंत्रियों ने मिलकर के धोखा देकर महाराज ले लिया, उनको जंगल में निकाल दिए। तो राजा रानी और सत्यवान तीन वही जंगल में चले गए, जंगल में ऋषि मुनियों के वहां आश्रम में रहते और कासाय कपड़ा पहन लिया, साधुओं का वेश होता है ना वैसे कपड़े उनके पहन लिए, वहां रहने लगे। राजा रानी के नेत्र नहीं थे, दिखता नहीं था, तो सत्यवान सेवा में लगा रहता था, अब वो क्या लाभ पास में कुछ नहीं, तो जंगल में जाकर सूखी सूखी लकड़ियां काट करके वृक्षों में सूख जाती है, उस लकड़ियां उस नीचे मिल जाती है, वो ला करके उनकी बिक्री करके उससे अपना अपने माता पिता का उधर पूर्ति निर्वाह करते थे। ऐसे वो पहुंचे राजा अपनी पुत्री को लेकर, और ये पिता से कहा कि महाराज आपके पुत्र के लिए मेरी कन्या देता हूं। तो वो बोले कि हमारा भी विचार आपके साथ संबंध करने का था, परंतु मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक भिखारी हूं, सामने विवाह मैत्री होता है वो ये और ये समम वित्तम ये और ये समम कुलम, तो जिनके दोनों में धन बरोबर हो, कुल बरोबर हो, पृथ्वी बरोबर हो, अधिकार बरोबर हो, तो और मैत्री विवाह मित्रता उनके साथ अथवा विवाह उन समान के साथ होता है, न तो पुष्ट विपुष्ट हो, एक अच्छा और एक बड़ा गरीब हो, ऐसा होता नहीं। तो मेरे पास आपकी कन्या कैसे रहेगी, मैं तो एक भिखारी की तरह हूं अभी। तो राजा ने कहा कि मेरा विचार नहीं, मेरी पुत्री यही रहना चाहती है, कैसे राजमहलों में रहने वाली आपकी कन्या ऐसे कैसे निर्वाह करेगी। क्यों ना उनका खुद का विचार ऐसा ही है, तो मैं तो आपके साथ संबंध रखना चाहता ही हूं। तो वहां कन्या दे दी, उन्हें बहुत कुछ धन दिया, संपत्ति दी, ब्याह कर दिया विधि विधान से, सूरत लिया। राजा चले गए तो सावित्री ने वैसे कपड़े पहन लिए, बड़ी सादगी से, वे सब कुछ अपने बक्सा वक्सा रख दिया, वैसी सादगी, जब सास ससुर पति थे ऐसे गरीबी के वस्त्र, वैसे धान करके सेवा करने लगी। बृंद सास ससुर उनकी खूब उत्साह से सेवा करने लगी। पहले शक्तिमान एक था, अब दो हो गए सेवा करने वाले। ऐसी सेवा करते करते दिन बीत गए, वो 12 महीनों का दिन वो आ गया। उस दिन सास ने पूछा कि मैं व्रत करूंगी, नियम व्रत। पति से भी कहा मेरे व्रत करना है, नियम व्रत करूंगी। अब कल दिन वो है, पहले दिन व्रत गया, तो उस दिन पति से कहा कि आज मैं सास आप जाओगे, आपके साथ में चलोगे। तो कहते कल तो व्रत किया है, राजकुमारी और व्रत किया हुआ भूखी मेरे साथ कैसे चलोगे। कहते मैं तो साथ चलूंगी। तो उसने कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरी माँ कहे तो चल सकती हो। तो माँ के साथ पगा पड़ी, आज मेरे को आज्ञा दो, मैं अपने प्राणनाथ के साथ जाऊंगी। कहते कही थी कल तुमने व्रत किया है, भूखी हो, और जंगल में पहाड़ों में कहाँ जाओगी, शरीर तेरा कोमल है, जिसे व्रत की हुई। तो कहा देखो मेरे को 12 महीने होने लगे हैं, मैं आपसे कोई बात मांगी नहीं, आज एक बात मांगी, ये तो कृपा कर मेरे को दो। अभी क्या कहती कितनी बेटा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तुम अपने ससुर से मांगो। कहते आप सिफारिश करो। तो वो यही कहा, बहू कहती है कि मैं पति के साथ जाऊंगी, वो कहने लगे कैसे इनके साथ भेजे, सुकोमल कैसा शरीर है इसका, और व्रत किया हुआ, और जंगल में कैसे जाएगी। कहते ये बहुत अर्थ करती है। उसे यही कहा कि मैंने कोई बात आज तक आपसे कही नहीं, कोई चीज मांगी नहीं, आज तो कृपा करो मेरे बदले साथ हो। ज्यादा कहने से सवे जाओ कह दिया। तो वो साथ चली, वो सत्यवान जा रहा है, वो जंगल में देखता था कि ये या नदी है, या सरोवर है, या ये वृक्ष है, या ये पहाड़ है, या तरह तरह की बातें दिखाते रहे, वो चलती रही दिखाते रहे। जंगल में गए, जंगल में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर कुछ सूखी उखी लकड़ियां थी, तो वृक्ष पर चढ़ा और लकड़ियों काट काट करके नीचे गाड़ डालने लगा। वो उन लकड़ियों को इकट्ठा करके इकट्ठी कर रही थी। ऐसे करते करते उसे कहा मेरा चीख घूमट रहा है, कुछ ठीक नहीं है मेरी तबीयत। तो कुल्हाड़ी पकड़ ली, नीचे उतर गया, वो पटक करके फिर बैठ गया। अब मेरे ठीक नहीं है स्वास्थ्य मेरा, तो आप सो जाओ। वो सावित्री जानती है इस बात को, वो बीता आ गया है, वो समय आ गया है, इस वादे में साथ गई थी, तो ठीक है आप सो जाओ। अपना कपड़ा बिछा दिया, सुला दिया, अपने गोद में उनका सिर ले लिया और अपने कपड़े से हवा करती रही, करती रही। तो कुछ देर के बाद एक भैंसे पर चढ़े हुए लाल लाल कपड़े काला स्वरूप वो सामने आए, और वो उसके प्राण लेने के लिए धर्मराज खुद। उसने पूछा कि आप कौन है? कि मैं धर्मराज हूं। यमराज कहते वो मैं हूं। क्यों पता रहे? इसकी आयु समाप्त हो गई। इस बात में लेने के लिए आया हूं, इसको ले जाऊंगा। तो सावित्री बोली, मैंने तो सुना है आपके दूत आया करते हैं, वो दूत ले जाते हैं प्राणियों को। मैं तो ऐसी बात सुनी है, आप कैसे आए? दूत आए थे तो पति पड़ता है, तेरी क्रोध भी इसका सिर है, तो ले जाने की ताकत नहीं होगी, ले जा नहीं सके। दूध खाली आ गए तो मैं खुद आया हूं, ले जाऊंगा। अच्छा बना तो प्राण निकले वो सूक्ष्म शरीर से, फांसी डाल करके वो ले जाने लगे। तो वो धीरे से अपने शरीर को सुलाकर और साथ साथ जाने लगे। इसे पीछे कि तुम कहां जाती हो? कि मेरे जहां प्राण नाग जाए वहीं जाती हूं, और मेरे को कहां जाऊं? मैं पिता के घर जन्मे और पिता माता ने कन्यादान कर दिया, अब इनको छोड़ मैं कहां जाऊं? मेरे प्राण नाग इन साथ जाऊंगी। कि देखो मेरे लोक में जीता जीता आदमी नहीं जाता, मरने के बाद जाता है। क्योंकि आपकी कृपा से मेरे को कोई भी रोक सकता। तो निरोलाज ने कहा भाई हवा ये जा सकती है, इसका तपोबल है, इसका व्रत का इसका नियम है, तुम जा सकती हो। तो वे तुम मत चलो, वरदान दे लो, जो चाहो सो वरदान मांग लो मेरे से। कभी मेरे सास ससुर जी नेत्र ठीक हो जाए, अंदर पर मिट जाए, तो सास को फिर चले तो फिर लाई क्यों आ रही है? अब क्यों आती पीछे? कि तो आप जैसे महापुरुषों से लाभ इतना ही होना चाहिए क्या? ऐसे दुष्टि महापुरुष आप इतना ही होना चाहिए, तो वैसे और मांग ले तो मेरे ससुर का राज्य मिल जाए। पैसा है दिशाई का राज्य मिल जाएगा। फिर चले तो अब क्यों जाती हो? तो वरदान मांगो बोल, और क्या वरदान चाहती बोल। तो आप उन पुरुषों से थोड़ा क्या मिले वो बोल, क्या चाहती हो? मैं भाई बहन एक ही हूं, मेरे भाई नहीं है, 100 भाई हो जा मेरे। भाई मेरे एक दुष्कार क्या भाई वो 100 भाई ऐसा हो जाएगा। फिर चले फिर पीछे चले कि अब गुआती है तो बोला आप मेरे आपसे वरदान थोड़ा ही मिलना चाहिएगा। अच्छा तू एक वरदान और मांग रहे तो महाराज मेरे भी 100 पुत्र हो जाए। कहते सार तू अब कहां जाती हो? कि आप सोचो आपने वरदान क्या दिया है। तो बोला आप ले जा रहे हो ले लिया पुत्र वरदान, पुत्र होगा तेरे। जब कहा तो जाओ बेटी, 400 वर्ष की तो उम्र होगी और फिर 100 पुत्र होगी। संवाद वो देख रहा था, वो सो गया, उनको बेहोशी थी इधर से, और ये स्वप्न की तरह वो देख रहा था कि वो आए लाल वस्त्र और भी ले गए साथ साथ, ये जा रही थी, वरदान मांगा, सुना, सब सुना, तो जागी, उठा गया, तो प्राण आ गए और कहा कि मैंने क्या देखा कि अब दिन थोड़ा ही है, सूर्य अस्त हो रहा है, अब चलो इतना रास्ता है, उसमें समय लगेगा, आपके पिताजी को चिंता होगी, अपने चलो। तो मैंने आज क्या देखा, स्वप्न आया, मैंने ऐसा ऐसा देखा, इतना प्रबंध करा, तो ऐसा हुआ तो बात ठीक है। फिर आई, थोड़ी सी रात्रि हो गई, समय देरी हो गई, और देरी होने से वो माता पिता की बड़ी चिंता हुई, आज वो भी नहीं आई, बेटा भी गया, सुना हो मेरा हमारा पुत्र नहीं आया। फिर ऋषि मुनि से पूछा, बोले महाराज चिंता मत करो, विराजी खुशी प्रसन्न है, आ जाएंगे, चिंता मत करो। फिर वो आए तो बेटा देरी बहुत होगी, पिताजी मेरी वो नींद आ गई, हो सकती है देर लग गई उसमें। अच्छा, फिर वो मतलब सुनाई बात, ऐसे उसने वरदान मांगे, तो कई वरदान मांग ले, धर्मराज भी ठगे गए, पति बता गई व्रत होता है, एक नियम होता है महाराज, तो पतिव्रताओं का तेज बहुत विवश होता है, अनुकूल होता है, उसमें शक्ति सामर्थ्य वो सांडली की बात आती है, सूर्यास्त होता उनको बंद कर दिया, सूर्य उदय नहीं होगा, मेरा पति मर जाएगा, बहुतों ने कहा कि तेरे पति मर जाएगा, उनको साफ दिया किसी ने कि सूर्य उदय होते हुए कोटी था पति। Thank you.